हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 16 श्लोक संख्या 13, 14 एंड 15। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतं अत्यैव मे विशतो मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्तये, कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त्वा। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय, तत्थाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधु, वर्गीनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणममालम प्रेम पुमर्थोमः। श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्राद्रहो न परा करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्र पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसास्मरां। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारि, हे नाथ नारायण यण वासुदेव। जिहवे पिबस्वा मृतुमेतदेव, गोविंद दामो धरमाधवेति। यं ब्रह्मावरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति देवयेस्तवे, वेदिसाङ्गपत्क्रमोपनिषदे
गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जायामुधीरये नष्टप्रायेषु भक्त्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीयद्वैतगदाधार श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राशि श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय हो। पहला स्कंद अध्याय 16 जिसका शीर्षक है परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया। श्लोक संख्या 13, 14 और 15। कृपया मेरे साथ साथ इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूत गोस्वामी कहते हैं, तत्र तत्रोपशृण्वानः स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमाणं च यशः कृष्णमाहात्म्यसूचकम् आत्मानं च परित्रातम् अश्वथाम्नोऽस्त्र तेजस स्नेहं च विष्णुपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे तेभ्यः परमसन्तुष्टः प्रीत्युज्जिम्भितलोचना महाधनानि वासांसि ददौ हारान्महामना। तत्र तत्रोपशृण्वानः स्वपूर्वे शां महात्मनां प्रगीयमाणं च यशः कृष्णमाहात्म्यसूचकम् आत्मना आत्मानं च परित्रातम् अश्वत्थाम्नोऽस्त्र तेजसः स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे तेभ्यः परमसन्तुष्टः प्रीत्युज्जिम्भितलोचनम् महाधानानि वासांसि ददौ हारान्महामना। तत्र तत्र उपशृण्वन् तत्र तत्र मतलब जहां जहां गए। अब महाराज परीक्षित जो है वो दिग्विजय करने के लिए जहां जहां पर जा रहे थे वहां पर उपश्रवण उपश्रवण मतलब निरंतर हर जगह पर उनको सुनाई दे रहे थे। श्रवण कंटिन्यूस उनको क्या सुनाई दे रहा था, स्व पूर्वेशम स्व मतलब उनके अपने पूर्वेशा मतलब जो पुरखे अर्थात पांडव इत्यादि जो उनके पूर्वज थे उनके विषय में महा आत्मानम जो सब के सब भगवान के भक्त थे महात्मानम माम पार्थ भगवान के जो भक्त हैं उनके लिए यहाँ पर सूत गोस्वामी ने शब्द दिया है महात्मानम तो वो सब महात्मा हैं जो उनके पूर्वज हैं और उनके विषय में हर जगह उनको सुनाई देता था प्रगीयमाणम से यश प्रगीयमाणम मतलब इस तरह से संबोधित करने वालों को च यश उनका यश बताते थे और कृष्ण महात्म्य सूचकम इससे क्या होता था कृष्ण महात्म्य यानी भगवान कृष्ण का महात्म्य मतलब यशस्वी कार्य सूचकम सूचित करने वाला था जिस जब जब उनकी बात आती थी तो उससे रिलेटेड जरूर भगवान से क्योंकि जब भगवान का भक्त की कोई बात आती है जब भक्त के विषय में कोई बात करता है तो अवश्य भगवान से रिलेटेड होती है तो जब भी उनके पूर्वजों की ख्याति या यश कहीं पर बताया जाता था तो साथ में भगवान के विषय में भगवान के नाम के विषय में भगवान की कृपा के विषय में भी बताया जाता था और उसके साथ सूचकम यानी सूचित करने वाला आत्मानम मतलब अपने को अब स्वयं भी वो साक्षात जो परीक्षित महाराज हैं च परित्राणम उनका भी उद्धार हुआ माता के गर्भ में जब उनको अश्वत्थामान अस्त्र तेजसा अश्वत्थामा ने वो बहुत ही शक्तिशाली जो ब्रह्म अस्त्र का उनके ऊपर उपयोग किया था तो स्नेहम च वृष्णि पार्थानम वृष्णि अर्थात वृष्णि जो भगवान श्री कृष्ण वृष्णि वंशी हैं और उनका पार्थानम यानी प्रथा की संतानों के बीच में बहुत ज्यादा स्नेह था जिसके कारण गर्भ में आपकी भी रक्षा हुई तेषां भक्तिम च केशव तेषां मतलब उन सब की भक्ति यानी भक्ति च केशव यानी भगवान श्री कृष्ण में वो सब भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तेभ्यः परम संतुष्ट तेभ्यः यानी उनको अत्यधिक परम यानी बहुत ज्यादा संतुष्ट पर प्रसन्नता हुई प्रतीत आकर्षण उज्रिम भीता यानी हर्ष से खुले लोचना ऐसे जब वो सुनते थे ना जहां जहां पर जाते थे वहां पर उनके पूर्वजों की ख्याति होती थी उनके माता पिता उनके अर्जुन जो उनके दादा इत्यादि हैं प्रथा महारानी उन सबकी ख्याति होती थी और साथ साथ में भगवान की उनके ऊपर कृपा के विषय में जो बताए जाते थे तो उनकी आंखें नेत्र जो है ना वो हर्ष से जैसे हम किसी खुल जाते अच्छा मेरे माता पिता के साथ ऐसा हुआ अच्छा मेरे दादाजी के साथ भगवान ने इस तरह इतना स्नेह करते थे मेरे पूर्वजों के साथ भगवान तो इस तरह से उज्जिम्भित लोचना यानी नेत्र जो है वो बहुत ही हर्ष से खुल जाते महाधनानी यानी बहुमूल्य धन वासंसी यानी वस्त्र ददौ यानी दान में हारान यानी गले के हार महामना विशाल हृदय वाला अनुवाद देखिए राजा जहां जहां भी जाता उसे निरंतर अपने उन महान पूर्वजों को का जो सभी भगवत भक्त थे यशोगान तथा भगवान श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों की गाथा सुनने को मिलती वे यह भी सुनते कि किस तरह से वे स्वयं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रचंड ताप से भगवान श्री कृष्ण द्वारा बचाए गए थे लोग ऋषि तथा पृथावंशियों के मध्य अत्यधिक स्नेह का भी उल्लेख करते क्योंकि प्रथा भगवान केशव के प्रति अत्यधिक श्रद्धावान थी राजा ने ऐसे यशोगान करने वालों से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ अपनी आंखें खोली उदारतावश उसने प्रसन्न होकर उन्हें मूल्यवान हार तथा वस्त्र भेंट किए श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय हो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं राजाओं तथा राज्य के बड़े बड़े लोगों का मान को मान पत्र दिए जाते थे। यह प्रथा अनादिकाल से चली आ रही थी। महाराज परीक्षित तो विश्व के विख्यात सम्राट में से थे, अतएव वे विश्व के जिन जिन स्थानों में जाते वहीं उनको मान पत्र दिया जाता। इन मान पत्रों का विषय होता था कृष्ण। कृष्ण का अर्थ है कृष्ण तथा उनके नित्य भक्त। जिस तरह राजा का अर्थ राजा तथा उसके विश्वास पात्र दरबारी गण होता है, कृष्ण तथा उनके अनन्य भक्तों को विलत नहीं किया जा सकता। अतएव भक्त के यशोगान का अर्थ है भगवान का यशोगान और भगवान के यशोगान का अर्थ है भक्त का यशोगान। महाराज परीक्षित को अपने पूर्वज महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन का यशोगान सुनकर इतनी प्रसन्नता न होती यदि वे सब भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों से जुड़े न होते। भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने के उद्देश्य से ही अवतरित होते हैं परित्राणाय साधुनाम। भक्तगण भगवान की उपस्थिति से ही महिमा मंडित हो जाते हैं क्योंकि वे भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों के बिना क्षण भर भी नहीं रह सकते। भक्तों के लिए भगवान अपने कार्यों तथा महिमा से उपस्थित रहते हैं। अतएव जब भगवान के कार्यों द्वारा उनका यशोगान किया जा रहा था तो उन्हें भगवान की उपस्थिति का अनुभव हुआ। विशेष रूप से जब भगवान ने ही उनकी रक्षा माता के गर्भ में की थी। भगवान के भक्त कभी संकट में नहीं आते किंतु भौतिक जगत में वे भयावह परिस्थितियों में पड़ जाते हैं क्योंकि यह जगत पद पद पर संकटों से पूर्ण है। अतएव जब भगवान द्वारा भक्तों की रक्षा होती है तो भगवान का यशोगान किया जाता है। यदि पांडव जैसे भगवत भक्त कुरुक्षेत्र के युद्ध में फंसे न होते तो भगवान कृष्ण कभी भी गीता के उद्घोषक के रूप में महिमा मंडित न किए गए होते। मानपत्र में भगवान के ऐसे समस्त कार्यों का उल्लेख था। अतएव महाराज परीक्षित ने पूर्णतया संतुष्ट होकर इसे मान पत्र भेंट करने वालों को पुरस्कृत किया। आज के तथा अब के मान पत्र भेंट करने में यही अंतर है। आज के तथा उस समय के मान पत्र भेंट करने में यही अंतर है कि प्राचीन समय में महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति को ही मान पत्र भेंट किया जाता था। ऐसे मान पत्र तथ्यों तथा आंकड़ों से भरे होते थे और जो इन मान पत्रों को भेंट करता था वह प्रचुर पुरस्कार पाता था। किंतु आजकल जो मान पत्र भेंट किया जाता है उसमें वास्तविक आंकड़े नहीं होते, वह किसी पद अधिकारी को प्रसन्न करने के लिए भेंट किया जाता है और प्रायः चापलूसी से ओतप्रोत होता है। शायद ही मान पत्र भेंट करने वाला कभी कोई पुरस्कार पाता हो। श्रील प्रभुपाद की जय। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति किरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीमद् भागवतम अध्याय 16। इस अध्याय में हम परीक्षित महाराज ने किस प्रकार से कलयुग का सत्कार किया उसके विषय में सुन रहे हैं। और जैसे पहली बार परीक्षित महाराज की भेंट हुई कलयुग से, वो क्या कर रहा था? वो बेल और गाय के जोड़े पर प्रहार कर रहा था। तो ऐसा सुनने के बाद शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी को रोक दिया, बोला रुकिए, ये आप हमें सुना रहे हो कि उस समय एक व्यक्ति जो काले रंग का था, राजा का वेश धारण किया हुआ था, वो प्रहार कर रहा था गाय और बेल जैसे पशुओं पर, तो फिर ये कथा आप हमें सुना रहे हो कि उन्होंने उनको दंड दिया
लेकिन उनको उनको उनका वध नहीं किया। हम जानना तो चाहते हैं ऐसा क्यों किया, लेकिन आप तभी बताओ। तत् कथ्यता महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रय, क्योंकि हमारा कल्याण और किसी कथा को श्रवण करने में नहीं होगा, केवल कृष्ण कथा। यदि कृष्ण कथा श्रवण करने को मिलेगी, यदि यह जो संवाद है वो कृष्ण कथा से संबंधित है, तो आप हमें सुनाइए। क्योंकि जब हम कृष्ण कथा को श्रवण करते हैं तो फिर हमारे जीवन का वास्तविक कल्याण होता है। और कुछ सुनने योग्य नहीं है, इसलिए हमें सुनाइएगा मत यदि ये कृष्ण कथा से संबंधित नहीं है। तो आज जब सूत गोस्वामी बोलने को शुरू कर रहे हैं तो वे कहते हैं, तत्र तत्र श्रवानः स्वपूर्वेषां महात्मना, कि वो जहां जहां भी जाते थे ना दिग्विजय करने के लिए, वहां वहां पर उनके पूर्वजों की गाथा सुनने को मिलती थी। उनके पूर्वज कौन थे? भगवान के शुद्ध भक्त थे, महात्मना। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बताया कि भगवान और भक्त को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। जिस तरह से राजा और राज्य के अधिकारी उनको अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह भगवान, जहां पर भगवान के भक्त की बात आएगी वहां पर डेफिनेटली भगवान की बात आएगी। ऐसा नहीं है कि भक्त की बात भगवान के बारे में आप बताते जाओ, क्या बताओगे भगवान के बारे में यदि भक्त के साथ जोड़ कर कोई लीला नहीं बताओगे। तो भगवान के विषय में अभी भगवान की जो भगवान का यश जो है ना वो बढ़ता कैसे है? जब वो भक्त के साथ कोई व्यवहार करते हैं। आप बताइए, यदि प्रहलाद केवल भक्ति करता रहता और प्रहलाद की भक्ति की के बल पर यदि नरसिंहदेव भगवान आकर उनकी सहायता ना करते, तो भगवान की क्या ख्याति होती उसमें? वास्तव में भगवान को यश प्रदान करते हैं उनके भक्त, इसे उनको भी महात्मा कहा गया। अब देखिए, अगर यहाँ पर जैसे श्री प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि पांडव गण यदि ऐसी विकट स्थिति में ना आते, अर्जुन यदि ये न कहता कि कृष्ण में कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, अभी मैं कृपण दुर्बलता के कारण अपना धैर्य खो चुका हूँ, अपने स्वभाव को खो चुका हूँ, यह श्रेय स्यानिश्चितम ब्रूहितन में, यदि अर्जुन इस परिस्थिति में ना आते तो भगवान श्री कृष्ण को यह महिमा कैसे प्राप्त होती कि ये भगवान श्री कृष्ण वही है जो श्रीमद भगवद गीता का उद्घोषण करते हैं। इसलिए यहाँ पर सूत गोस्वामी कहते हैं, प्रगीयमाणम च यशः कृष्ण महात्म्य सूचकम्। जब भक्तों का यश गान होता है तो वहीं से भगवान के महात्मा की, भगवान की महिमा की गाथा स्टार्ट होती है। भक्तों के साथ ही भगवान की जो महिमा है वो वर्णन होती है। भक्तों अभी जिस तरह से वो बताते थे कि भाई किस तरह से पांडव, उनके पूर्वज के विषय में बताते कि पांडव इतने भगवान के शुद्ध भक्त थे कि भगवान, उनको कोई भी संकट आता तो भगवान फौरन वहां पर आ जाते थे उनकी रक्षा करने के लिए। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि परीक्षित महाराज को अपने पूर्वजों की ख्याति सुनकर या उनका यश सुनकर इतनी खुशी न होती यदि उसके वो ख्याति वो यश कृष्ण कथा से संबंधित न होते, यदि ये सब कृष्ण के कार्यकलापों से जुड़े हुए न होते। क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि जो शुद्ध भक्त होते हैं ना वो केवल कृष्ण के विषय में ही श्रवण करना चाहते हैं। अथवा अस्य पदाम भोज मकरंदल यहाँ सताम, वो भगवान के चरण कमलों की मधु को चाटने के आदि होते हैं, इसलिए वो और कोई टॉपिक की ओर आकर्षित होते ही नहीं है। और कुछ चल रहा होता है तो उनको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे टाइम का वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि उनके भक्तों की बात हो रही, क्यों कि स्नेहम च विष्णु पाठानाम तेषां भक्तिम च केचव, क्योंकि विष्णुवंशी यानी भगवान श्री कृष्ण और प्रथा के पुत्रों के बीच में बहुत स्नेह था। तेषां भक्तिम च केशव, वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और उन सबके कृष्ण के चरणों में अत्यधिक श्रद्धा थी। ना केवल इतना, यहाँ पर सूत गोस्वामी स्वयं परीक्षित के विषय में कहते हैं, आत्मानं च परित्रातम अश्वत्थामनोस्त्र तेजसा। स्वयं परीक्षित महाराज को भी अपने विषय में भी श्रवण करने को मिलता था कि आप भी माता के गर्भ में थे और इतना बड़ा संकट अश्वत्थामा ने आपके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और भगवान श्री कृष्ण ने उस समय आपके, तो इस तरह से जब महाराज सुनते थे सबके मुख से भगवान की कथा को, यानी कि भगवान किस तरह से हम हमारे पूर्वजों के साथ इतना स्नेह करते थे और किस तरह से भगवान की करुणा अपने भक्तों के ऊपर होती है, इसके विषय में सुनकर वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होते थे। तेभ्या परम संतुष्ट, बहुत ज्यादा संतुष्ट होते थे, आनंद से उनके नेत्र खुल जाते थे, मतलब जिधर जिधर जाते थे वहां वहां वास्तव में यश होता था। ये जो यश है ना, प्रगीयमाणम च यश, यश वही है जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़कर प्राप्त होता है। कृष्ण से संबंधित जब रामानंद राय से महाप्रभु ने पूछा कि कीर्ति मध्य कौन बड़ो कीर्तिवान, कि जो कीर्ति है, जो यश है, उसमें सबसे बड़ा यश कौन सा है, तब रामानंद राय बताते हैं, महाप्रभु वह यश जो भगवान से जुड़कर भगवान की भक्ति करके प्राप्त होता है वही वास्तविक यश है। यो तो ये पांडवों के उपरांत कितने सारे राजा आए इस भौतिक जगत में, कितने सारे राजा आए और चले गए, लेकिन पांडवों की ख्याति आज तक इतिहास में अमर हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो हैं वो भगवान से जुड़े हुए थे, ये भगवान के भक्त थे, भगवान के साथ जो जुड़ जाते हैं उनका यश कभी समाप्त नहीं होता। तो जहां जहां महाराज परीक्षित दिग्विजय करने के लिए जाते थे उन्हें मान पत्र दिए जाते थे और उसमें भगवान श्री कृष्ण के विषय में समस्त कार्यों को लिखा हुआ होता था और वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होते थे इनको देखकर, और ये सब भेंट जो उनको की जाती थी वो उनसे लेते थे और बदले में वो भी बहुत बड़े पुरस्कार उनको देते थे। लेकिन श्री प्रभुपाद जी कहते आज ये जो राजा थे ना महाराजा परीक्षित, उन्होंने तकरीबन सारे जितने भी कंट्रीज हैं उनको जीत लिया था और सब उनसे प्रेम करते थे, उनके ऊपर इतना भरोसा करते थे, उनको यकीन था कि हमारा जो राजा है वो शुद्ध भक्त है और उसी के जो रूल हैं उनको फॉलो करके हम कल्याण हमारा होगा। और राजा भी भक्तों को, जो भी प्रजा है उनको यही सिखाते थे कि किस तरह से आपका कल्याण होगा, कि आप आत्मा के विषय में सोचो, आप किस तरह से आध्यात्मिक उन्नति करो, किस तरह से आप अपनी जीवन में कृष्ण की भक्ति को सम्मिलित करो, तो यही सिखाया जाता था। पहले राजा जो है वो वास्तव में इसी तरह से अपनी प्रजा को प्रशिक्षित करते थे कि उन सबको भगवान की भक्ति करने का अवसर आसानी से प्राप्त हो। तो राजा इसीलिए हर जगह पे जा रहे थे ना, सब जगहों पे जा रहे थे, उनका कारण क्या था, ताकि वो देखें कि कहीं पर अपराध तो नहीं हो रहे हैं, कहीं पर लोग जो हैं वो गलत कार्य तो नहीं कर रहे हैं, सब लोग भगवान की भक्ति में लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो इतने अच्छे राजा को तो पुरस्कार दिए जाते थे, मान पत्र दिए जाते थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते आजकल जो मान पत्र भेंट किए जाते उसमें वास्तविक आंकड़े नहीं होते, वास्तविकता कुछ नहीं होती है मान पत्र के, वो खाली चापलूसी में खुशाबंद में लफ्ज लिख दिए जाते हैं, लेकिन पहले जो था वो प्रजा को पूरी स्वतंत्रता होती थी कि राजा के विषय में जो सच्चाई है वो लिखते थे, लेकिन आज तो सब केवल चापलूसी से ओतप्रोत होता है, शायद ही मान पत्र भेंट करने वाले को कोई पुरस्कार देता होगा। आज तो है ही नहीं ऐसा आदान प्रदान के राजा को हम भेंट दें और राजा और मान पत्र दे, उस पर पूरा लिखा कि आपने ये कार्य किए हैं और इससे हमारा कितना कल्याण होता था, भगवान कि कितनी कृपा हुई आपके कारण हमें, लेकिन ये आज जब ये बताया जाता है तो वो सब झूठ झूठ में बताया जाता है, केवल खुशामद की जाती है, आज ऐसा कोई राजा है ही नहीं। तो इसका मतलब ये कि हम ये सोचें कि अब तो कलयुग है, अब तो ऐसा राज्य या ऐसे राजा संभव नहीं है, ऐसा नहीं है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, भगवान इतने हम लोग को ऐसा लगता है ना, हर साइड पर भ्रष्टाचार है, हर साइड पर अंधकार है, हर दिशा में केवल अपराध ही अपराध है, कलयुग इतना ज्यादा आगे हो गया है, ये हो गया। लेकिन भगवान की एक ठोकर यदि लग जाए ना, अगर थोड़ी सी ठोकर भी लग जाए ना, तो ये सब कलयुग का जो असर है वो सब समाप्त हो सकता है। भगवान ने इंद्र को ये साबित करके दिखाया कि इंद्र तुम्हारी सारी शक्ति जो है वो केवल मेरे दाहिने हाथ के छोटी उंगली के नाखून के से भी कम है, उसके भी बराबर नहीं है, क्योंकि उससे भी मैं तुम्हें परास्त कर सकता हूँ। भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं। हमें भगवान के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए कि हम जहां पर भी रहेंगे, पहले कोई भी युग हो, लेकिन भगवान हमें प्रोटेक्शन अवश्य प्रदान करेंगे, भगवान हमें अवश्य सुरक्षा प्रदान करेंगे। और यही वास्तव में एक भक्त के लिए जीने की कला है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, पृथ्वी ते आचयत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम, कि पृथ्वी पर जितने भी नगर और गांव हैं, वहां पर सर्वत्र मेरा नाम प्रचार होगा। और महाप्रभु ने कह दिया, समझो उसी समय हो गया। अब केवल किसी को ऊपर उठना था जो कि ये कार्य करे, तो उसी तरह से आज भी हर जगह पर कृष्ण भावना का प्रचार हो सकता है, हर जगह पर भक्ति हो सकती है। हम ये नहीं सोच सकते कि नहीं ये लोग नहीं समझेंगे, नहीं, सब कुछ हो सकता है। हमें कृष्ण के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए, कृष्ण के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण अवश्य सहायता करेंगे, कृष्ण अवश्य कृपा करेंगे। हमें केवल अपने कर्तव्यों को, अगर हर कोई राजा सारी प्रजा अपने कर्तव्यों को पालन करे, तो आज भी राम राज्य जैसा राज्य हो सकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।